नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। भारत ने चक्रवात दित्वा से प्रभावित इलाकों के पुनर्निर्माण में मदद के लिए श्रीलंका को $450 मिलियन के पैकेज की घोषणा की है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने देश में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को जिम्मेदार ठहराया। रूसी स्टेट ड्यूमा के स्पीकर ने यूक्रेन युद्ध के लिए यूरोपीय संघ, पूर्व अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके समर्थकों पर आरोप लगाया है। और महिला क्रिकेट में भारत ने विशाखापत्तनम में दूसरे T20 मैच में श्रीलंका को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत श्रीलंका में चक्रवात दित्वा से प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण में सहायता के लिए $450 मिलियन का पैकेज प्रदान करेगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज कोलंबो में मीडिया को संबोधित करते हुए ये घोषणा की। उन्होंने बताया कि इस पैकेज में $350 मिलियन की रियायती ऋण लाइन और $100 मिलियन का अनुदान शामिल है, जिसका उद्देश्य चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण में सहायता करना है। उन्होंने कहा कि भारत की सहायता से चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों को बेहतर सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें सड़क, रेल और पुल संपर्क का पुनर्निर्माण, क्षतिग्रस्त घरों के निर्माण के लिए सहायता शामिल है। विदेश मंत्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके से मुलाकात की, चक्रवात से हुए नुकसान पर विस्तृत चर्चा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पत्र उन्हें सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि ये महिलाओं के नेतृत्व में भारत का पहला समझौता है। उन्होंने कहा कि वार्ताकारों में लगभग सभी महिलाएं थीं। श्री मोदी ने वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के एक लेख को साझा करते हुए कहा कि भारत के आज के मुक्त व्यापार समझौते केवल शुल्क कटौती तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और लाखों लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के व्यापक मिशन का हिस्सा है। बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी के महासचिव मिर्जा फखरूल ने आज कहा कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की विफलता के कारण ही देश में कानून व्यवस्था बिगड़ी है। उन्होंने सरकार से चुनाव के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में प्रभावी भूमिका निभाने का आग्रह किया। श्री फखरूल ने संवाददाताओं को बताया कि देश परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, लेकिन कुछ गुटों द्वारा रची गई साजिशें इस प्रक्रिया में बाधा डाल रही हैं। उन्होंने दावा किया कि ऐसी ही साजिशों के कारण राजनीतिक कार्यकर्ता उस्मान हादी की हत्या हुई। विदेश मंत्रालय ने आज सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हमीदुल्ला को तलब किया। इससे पहले पिछले सप्ताह भी मंत्रालय ने उच्चायुक्त को तलब किया था और बांग्लादेश में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया था। कई हिंदू संगठनों ने आज नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों और दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया। उच्चायोग के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और 3 स्तरीय बैरिकेडिंग लगाकर इलाके को सुरक्षित कर लिया गया है। भारत और अमेरिका को आर्थिक सहयोग बढ़ाने और दोनों पक्षों में व्यापारिक विश्वास को मजबूत करने के लिए लंबित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देना होगा। अमेरिका भारत व्यापार परिषद के अध्यक्ष अतुल केशप ने हाल ही में अपनी भारत यात्रा के दौरान ये बात कही। एक रिपोर्ट।
भारतीय निर्यात पर अमेरिका के टैरिफ मुद्दे पर श्री केशप ने कहा कि भारत ने इसके प्रभाव को कम करने के लिए अपने निर्यात बाजारों में विविधता लाने का प्रयास किया है। उन्होंने बताया कि इसके बाद भी 2025 में अमेरिका को भारत के माल निर्यात में वृद्धि हुई है। श्री केशप ने कहा कि टैरिफ कम करने वाले समझौतों से दोनों देशों के उत्पादकों और निर्यातकों को लाभ होगा। भारत के नवोन्मेषी प्रस्तावों में अमरीकी निर्यातकों के लिए बाजार पहुँच का विस्तार हो सकता है। श्री केशप ने कहा कि समझौते से वस्तुओं और सेवाओं के द्विपक्षीय व्यापार में 500 अरब डॉलर के साझा लक्ष्य की ओर तेजी आएगी। रक्षा आपूर्ति श्रृंखला और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बढ़ते रणनीतिक सहयोग की पृष्ठभूमि में अमेरिका भारत व्यापार वार्ता हो रही है। पिछले एक दशक में दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार में लगातार वृद्धि हुई है और अमेरिकी कंपनियां भारत को दीर्घकालिक निवेश गंतव्य के रूप में देख रही हैं। विश्व दर्पण के लिए शक्ति सिंह।
विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। रूस की संसद ड्यूमा के अध्यक्ष व्याचिस्लाव वोलोडिन ने यूक्रेन संघर्ष के लिए यूरोपियन यूनियन, पूर्व अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके समर्थकों को जिम्मेदार ठहराया है। एक बैठक में श्री वोलोडिन ने कहा कि संघर्ष के ये सभी दोषी रूस पर आरोप लगाकर अपनी सत्ता बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रूस ने कभी भी यूरोप को अपना दुश्मन नहीं माना और हमेशा उसे विकास के अवसर दिए हैं। उन्होंने कहा कि रूस ने सस्ती ऊर्जा प्रदान कर यूरोप की अर्थव्यवस्था को ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाया है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूरोपियन यूनियन द्वारा रूसी संपत्ति जब्त करने के प्रयासों को लूट बताया था। यूक्रेन पर रूस के हवाई हमलों में 3 लोगों की मौत हो गई। ये हमले कल रात किए गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि रूस ने 13 क्षेत्रों में 650 से अधिक ड्रोन और 30 से अधिक मिसाइलें दागी। हमले में यूक्रेन की ऊर्जा प्रणाली और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया कि उनके वायु रक्षा प्रणालियों ने बड़ी संख्या में ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने दैनिक ब्रीफिंग में बताया कि सोमालिया में इस वर्ष सितंबर से दिसंबर के बीच 1,20,000 लोग विस्थापित हुए हैं, क्योंकि पानी की कीमतें आसमान छू रही हैं, भोजन की कमी बढ़ती जा रही है, मवेशी मर रहे हैं और आजीविका का संकट है। एक रिपोर्ट।
संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता ने कहा कि सोमालिया के लगभग 46 लाख से अधिक लोग सूखे से प्रभावित हैं। देश भर में 75,000 से अधिक छात्रों को स्कूल छोड़ना पड़ा है। प्रवक्ता ने बताया है कि अगले 4 महीने महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि अगली बारिश का मौसम अप्रैल 2026 तक आने की उम्मीद नहीं है। दुजारिक ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के केंद्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया कोष के द्वारा नवम्बर के अंत में $10 मिलियन आवंटित किए थे, लेकिन तत्काल और अधिक सहायता की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय ने कहा कि सूखे की आपात स्थिति 2 मुख्य वर्षा ऋतुओं के खराब प्रदर्शन के बाद उत्पन्न हुई है और सहायता के लिए धन की कमी ने इसे और भी गंभीर बना दिया है, जिससे सोमालिया की पहले से ही दयनीय मानवीय स्थिति और भी बिगड़ गई है। विश्व दर्पण के लिए प्रशांत कुमार।
थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा संघर्ष के 70वें दिन कंबोडिया में नागरिक की मृत्यु का आंकड़ा बढ़कर 21 हो गया है। कंबोडिया के रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल माली सुचेता के अनुसार थाई सैन्य बल कंबोडियाई क्षेत्र में लगातार गोलीबारी कर रहे हैं। कंबोडिया थाईलैंड सीमा संघर्ष 7 दिसंबर से फिर से भड़क उठा है और दोनों देश एक दूसरे पर हमले की शुरुआत करने का आरोप लगा रहे हैं। विशाखापट्टनम में महिला क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे T20 मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 129 रन का लक्ष्य 12वें ओवर में ही हासिल कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 128 रन बनाए थे। शिफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-0 से आगे है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने चक्रवात दित्वा से प्रभावित इलाकों के पुनर्निर्माण में मदद के लिए श्रीलंका को $450 मिलियन के पैकेज की घोषणा की है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने देश में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को जिम्मेदार ठहराया। रूस की संसद ड्यूमा के स्पीकर ने यूक्रेन युद्ध के लिए यूरोपीय संघ, पूर्व अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके समर्थकों पर आरोप लगाया है। और महिला क्रिकेट में भारत ने विशाखापट्टनम में दूसरी T20 मैच में श्रीलंका को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।